हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवतम क्लास में हम सभी भक्तों का स्वागत करते हैं। स्कंद 7 अध्याय 1 और श्लोक संख्या 4 और 5 हम लोग लगे, तो आप सब लोग हमारे पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। श्री ऋषि उवाच साधु पृष्ठम महाराज हरेश्चरितम् अद्भुतम् यद्भागवतम् महात्मयम् भगवद्भक्तिर्वर्धनम् गीयते परमं पुण्यम् ऋषिं भिनार्दनोद्भिः नत्वा कृष्णाय मुनये कथयेष्ये हरे कथां। श्रीऋषिरुवाच साधु पृष्टं महाराज हरेश्चरितम् अद्भुतं यद्भागवतं महात्म्यं भगवद्भक्तिर्वर्धनं गीयते परमं पुण्यम् ऋषिभि नारदादिभि नत्वा कृष्णाय मुने कथयिष्ये हरे कथां। श्री ऋषिरुवाच साधु पृष्टं महाराज हरेश्चरितम् अद्भुतं यद्भागवतं महात्मयम् भगवद्भक्तिर्वर्धनम् गीयते परमं पुण्यम् ऋषिभिर्नारदादिभिः नत्वा कृष्णाय मुने कथयिष्ये हरे कथां। इसका अनुवाद हमारे साथ साथ दोहराइए। श्री ऋषि उवाच श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा साधु सर्वश्रेष्ठ पृष्ठम प्रश्न महाराजा हे महान राजा हरे हे परमेश्वरों हरि के चरितम कार्यकलाप अद्भुतम अद्भुत यत जिससे भागवत भगवान के भक्त का महात्मयम यश भगवत भक्ति भगवान की भक्ति को वर्धनम बढ़ाने वाली गीयते गाई जाती है परमम अग्रणी पुण्यम पवित्र ऋषि भी ऋषियों के द्वारा नारद आदि द्वारा नत्वा नमस्कार करके कृष्णाय कृष्ण द्वैतपायन व्यास को मुने मुनि कथयिष्ये मैं कह सुनाऊंगा हरे हरि की कथां कथाएं। अनुवाद ध्यानपूर्वक सुने। महामुनि सुखदेव गोस्वामी ने कहा हे राजा आपने मुझसे अतीव श्रेष्ठ प्रश्न किया है भगवान के कार्यकलापों से संबंधित कथाएं जिनमें उनके भक्तों के भी यशों का वर्णन रहता है भक्तों को अत्यंत भाने वाली है। ऐसी अद्भुत कथाएं सदैव भौतिकतावादी जीवन शैली के कष्टों का निवारण करने वाली होती हैं। अतएव नारद जैसे मुनि श्रीमद् भागवतम के विषय में सदैव उपदेश देते रहते हैं क्योंकि इससे मनुष्य को भगवान के अद्भुत कार्यकलापों के श्रवण तथा कीर्तन की सुविधा प्राप्त होती है। अब मैं श्रील व्यासदेव जी को सादर प्रणाम करके भगवान हरि के कार्यकलापों से संबंधित कथाओं का वर्णन प्रारंभ करता हूं। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बताते हैं श्री प्रभुपाद की इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कृष्णाय मुनये को सादर नमस्कार करते हैं जिसका अर्थ है कि वे कृष्ण द्वैतपान व्यास को नमस्कार करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह सर्वप्रथम अपने गुरु को सादर प्रणाम करे। सुखदेव गोस्वामी के गुरु उनके पिता व्यासदेव हैं, अतः वे सर्वप्रथम कृष्ण द्वैपायन व्यास को सादर प्रणाम करते हैं। तब वे भगवान हरि की कथा का वर्णन करते हैं। जब भी हमें भगवान के दिव्य कार्यकलापों को सुनने का अवसर प्राप्त हो तो हमें चाहिए कि उसका लाभ उठाएं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तनीय सदा हरि की संस्तुति की, अर्थात मनुष्य को सदैव भगवान श्री कृष्ण के विषय में कीर्तन करके, उनके विषय में बातें करके तथा उनके विषय में सुन करके कृष्ण कथा में लगे रहना चाहिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का एकमात्र धर्म यही है। हरे कृष्णा। तो आप सबका हम लोग स्वागत करते हैं श्रीमद् भागवतम क्लास में, और जो ये प्रसंग चल रहा है सातवां स्कंद नया स्कंद शुरू हुआ है, और शुरुआत भी जो है प्रश्न से हुई है। श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने अब उसका उत्तर देना शुरू किया है। प्रश्न क्या है ये हम समझ लें। प्रश्न जो है थोड़ा सा पिछले स्कंद से संबंधित है, और पिछला स्कंद हम लोगों ने पढ़ लिया जिसमें वृत्रासुर और इंद्र के विषय में कथा थी, और भगवान के द्वारा जो है जो कृपा की गई भक्तों पर उसके विषय में कथा सुनने के बाद परीक्षित महाराज ने कुछ प्रश्न किए। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, अर्थात सुखदेव गोस्वामी जी को कह रहे हैं, भगवान विष्णु सबों के शुभ चिंतक होने के कारण हर एक को समान रूप से अत्यधिक प्रिय हैं, तो फिर उन्होंने किस तरह इंद्र का पक्षपात किया और उनके शत्रुओं को मारा? सबों के प्रति संभाव रखने वाला व्यक्ति किस तरह किसी के प्रति पक्षपात करेगा और अन्यों के प्रति शत्रु भाव रखेगा? तो यहाँ पर जो प्रश्न शुरू हुआ है उसमें, क्योंकि पिछला अध्याय हमने बता दिया कि उसमें वृत्रासुर और इंद्र के युद्ध की चर्चा हुई थी, और भगवान ने ही सारा सिस्टम रचा और बताया कि किस प्रकार जो है वृत्रासुर मरेंगे। तो यहाँ पर अब परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि भगवान ने इस प्रकार का पक्षपात क्यों किया जबकि भगवान इसे संभाव है। इसके बाद फिर कहा, विष्णु साक्षात भगवान तथा समस्त आनंद के आगार हैं, अतः उन्हें देवताओं का पक्ष ग्रहण करने से क्या लाभ मिलेगा? इस प्रकार उनका कौन सा स्वार्थ सधेगा? जब भगवान दिव्य हैं तो फिर उन्हें असुरों से भय कैसा और उनसे ईर्ष्या कैसी? और फिर कहा, हे सौभाग्यशाली तथा विद्वान ब्राह्मण, यह अत्यंत संदेहास्पद है विषय बन गया है कि नारायण पक्षपात पूर्ण है या निष्पक्ष है। कृपया निश्चित साक्ष्य द्वारा मेरे इस संदेह को दूर करें कि नारायण सर्वदा उदासीन तथा सबों के प्रति सम है। और आज जो है प्रश्न का उत्तर मिल रहा है। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज ने इस प्रकार के प्रश्न कर ये पूछना चाह रहे हैं, ये समझना चाह रहे हैं कि भगवान किस प्रकार का जो है, क्योंकि कहते हैं भगवान अपने आप को बताते हैं, समोहम सर्वभूतेषु ना मे द्वेषस्ति ना प्रियः, अर्थात ना तो मैं सभी के प्रति संभाव हूँ, भगवद गीता में भगवान ने कहा, और ना मैं किसी से द्वेष करता हूँ और ना ही किसी का विशेष प्रिय वो हूँ। लेकिन इस प्रसंग को देखकर परीक्षित महाराज को लगा कि यहाँ पर कहीं पर भगवान ने पक्षपात किया है इंद्र के साथ, वृत्रासुर को मरवा कर उनका क्लू दे दिया कि कहाँ से बनेगा, कैसे वज्र बनेगा और फिर किस प्रकार मारना है। और फिर हम लोग जान भी चुके हैं कि किस प्रकार भगवान ही चाहते थे कि वृत्रासुर, क्योंकि उनके शुद्ध भक्त वापस आए, लेकिन बाहरी दृष्टि से देखने में क्या लग रहा था कि वृत्रासुर एक असुर थे जिन्होंने देव असुरों का साथ दिया था, और इंद्र जो कि उन्होंने गड़बड़ भी की है उसके बावजूद भी भगवान ने उनका पक्षपात किया। जबकि इस पूरे प्रसंग में हम जानते हैं कि वृत्रासुर को भगवान का धाम प्राप्त हुआ मरने के बाद, और अभी इंद्र को इस संसार की मैनेजमेंट का जो सफरिंग्स हैं वो झेलनी पड़ेंगी अभी। लेकिन बाहरी दृष्टि से ये लगा कि इंद्र का पक्षपात किया है और वृतासुर को मरवा दिया गया है। तो परीक्षित महाराज का जो ये प्रश्न है, और उसके बाद ये प्रश्न निकल कर आया कि भी भगवान तो कहते हैं कि मैं संभाव हूं सबके प्रति, फिर क्यों किसी के प्रति पक्षपात करते हैं। तो उसके उदाहरण उसके चलते अब जो है सुखदेव गोस्वामी ने आज पहले तो उनके प्रश्न की जो है तारीफ करी, कहा हे महा सॉरी सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि हे राजा, आपने मुझसे अतीव श्रेष्ठ प्रश्न किया है। श्री राधा राधिकरण भगवान की, श्री कृष्ण बलराम की। भगवान के कार्यकलापों से संबंधित कथाएं जिनमें उनके भक्तों के भी यशों का वर्णन रहता है, भक्तों को अत्यंत भाने वाली है। तो देखिए परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं और भाव एकदम एक सरल भक्त की तरह उन्होंने प्रश्न किया कि भाई मुझे बताएं कि ऐसा क्यों पक्षपात मुझे दिख रहा है। कहीं पर उनके प्रश्न से ऐसी बू नहीं आती कि भाई मैं भी तो राजा था और मैंने भी पूरी पृथ्वी का राज्य किया था, मैं मेरे भी जो पूर्वज हैं इतने महान थे और मैंने तो इतना सारा धर्म का काम भी किया है, फिर आखिर क्यों एक छोटे से ब्राह्मण के श्राप के द्वारा मुझे 7 दिन के अंदर मृत्यु का फल मिल रहा है ना, जबकि मैंने इतनी भक्ति की तो अगर भगवान को पक्षपात करना था तो मुझे बचाने के लिए भी कुछ करना चाहिए था ना। ऐसा कुछ उनका इस तरह की बू नहीं आती उसमें, इस प्रश्न में कि भाई वो उन्होंने जो कथा सुनी है उसके विषय में पूछ रहे हैं, और कहीं ऐसा रेफरेंस कहीं ऐसा आखिरी में या बीच में भी कहीं ऐसा नहीं कि प्लीज मुझे बचा तो मैंने 7 दिन कथा सुनी है आपकी। जबकि भौतिक जगत में जो भागवत सप्ताह या भागवत सप्ताह करवाते हैं लोग, उसके पीछे ध्येय यही रहता है क्या कि हमें ये प्राप्त हो जाए या वो प्राप्त हो जाए, या लोगों को लगे कि हाँ हमने भागवत सप्ताह करवाया है। लेकिन यहाँ सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज दोनों ही भगवान के शुद्ध भक्त हैं और प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं, जिस प्रकार अर्जुन और कृष्ण के मध्य में कुरुक्षेत्र में प्रश्न और उत्तरावली चल रही है, अर्जुन भी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग शुद्ध भक्त नहीं हैं या हम लोगों ने भक्ति नहीं करनी थी या हम जैसे कंडीशन सोल के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार किया गया, अर्जुन से इस प्रकार के प्रश्न कराए गए ताकि हर तरह की चीज़ों का जवाब दिया जा सके। आज पूरे समाज में नाना प्रकार के हम देख सकते हैं कैटअप धर्म चल रहे हैं या इस प्रकार के धर्मों का बोलबाला है जिसमें कि नाम धर्म का यूज करते हैं लेकिन दूर दूर तक धर्म नजर नहीं आता। लेकिन भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन की सारी शंकाओं को इस प्रकार से उत्तर दिया जिससे कि आने वाले कलयुग में अगर हम जैसे लोग भी भगवद गीता पढ़ें तो हम समझ सकते हैं कि भगवान के द्वारा दिखाए गए मार्ग में किस प्रकार श्रेष्ठता है, किस प्रकार भगवान निराकार और साकार रूप में अपनी उपस्थिति बताकर ये बताते हैं कि साकार रूप में भक्ति करना श्रेयकर है, और किस प्रकार कितने प्रकार के योग और कर्मकांड इत्यादि से भी भक्ति कितनी ऊंची है। उन लोगों को अल्प बुद्धि कहा गया जिन लोगों ने अपनी विभिन्न प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति के लिए देवताओं की शरण ली भगवान भगवद गीता में, और श्रेयकर क्या होगा भगवान ने कहा अनन्य चिंतयन्तु मां, जो व्यक्ति मेरी अनन्य भक्ति करेगा। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण ने अर्जुन की सारी शंकाओं को दूर करते हुए सब बताया। उसी तरह परीक्षित महाराज अब सुखदेव गोस्वामी जी को भी जो है उनसे भी प्रश्न कर रहे हैं। शुद्ध भक्त हैं लेकिन ये प्रश्न फिर चल रहे हैं किस लिए, केवल हम जैसे इस भौतिक संसार के बद्ध जीवों के लिए, क्योंकि हम भी छोटी छोटी बात पर जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो भगवान के पास आते हैं और कहते हैं भगवान हम तो सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, गीता भी पढ़ते हैं, मंदिर भी आते हैं, फिर हमारे साथ वो काम क्यों नहीं हो रहा है जो हम चाहते हैं, और वो व्यक्ति जो हमारे पड़ोस में रहता है या वो जो हमारा बड़ा ही क्लोज रिलेटिव है जो तो मंदिर भी नहीं आता और पता नहीं क्या क्या करता है उल्टे सीधे काम सुबह से लेकर शाम तक, उसकी आप सुनते हो, उसको सब कुछ दे रहे हो, वो दिन दोगुनी रात चौगुनी कर रहा है, उसका तो बैंक बैलेंस ऐसे बढ़ रहा है पूछो मत। व्हाई बैड थिंग्स हैपन विद गुड पीपल, हम लोग सेमिनार भी करते हैं, तो कई बार ये जब भक्त लोग भी इस प्रकार की शंका प्रस्तुत करते हैं भगवान के सामने कि भगवान ऐसा क्यों, क्या कारण है कि आप जो हैं किसी के प्रति तो ऐसा लगता है कि बहुत ही ज्यादा उदारवान है और किसी के प्रति बहुत जो है नेग्लेक्ट कर देते हैं किसी को, ऐसा क्यों? तो क्या कहीं पक्षपात तो नहीं है आपके क्रियाओं में? जबकि आप एक चीज और भी बोलते हैं आगे कि आप तो बताते हैं, बताया जाता आपके बारे में आप तो गुणातीत हैं, आपको तो भौतिक संसार का जो है कुछ टच ही नहीं करता, उसके बावजूद भी आप कुछ के प्रति बहुत ही फेवरेबल हैं और उनको उसके प्रति पक्षपात करते हैं, कुछ के प्रति नहीं करते, ऐसा क्यों? तो यहाँ प्रश्न कर दिया। लेकिन इस प्रश्न को सुनने के बाद सुखदेव गोस्वामी जी ने पहले तो हमेशा जिस पहले की तरह सुखदेव गोस्वामी जी इतने सुंदर प्रश्नों को इसलिए भी अप्रिशिएट करते हैं परीक्षित महाराज के, क्योंकि एक जब कोई प्रश्न करता है ना तो कहानी आगे बढ़ती है। अगर कोई प्रश्न ही नहीं करेगा तो व्यक्ति व्याख्या क्या देगा, बात क्या करेगा, खत्म जी भागवत सप्ताह खत्म, दो दिन में खत्म हो जाता भागवत सप्ताह, नहीं कोई प्रश्न ही नहीं आ रहा, सब कुछ तो बता दिया, नहीं वो प्रश्न कर रहे हैं बार बार और लगातार उन प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे हैं और इन प्रश्नों के पीछे कहीं ऐसी वो नहीं आती कि वो खुद को बचाना चाहते हैं या कर्मकांड की भांति, एक कर्मकांडी व्यक्ति की भांति भागवत सप्ताह करवा रहे हैं, है ना, कि बाद में मैं बच जाऊं बस किसी तरह उस सर्प से जो मुझे 7 दिनों के बाद डसने वाला है। नहीं, इनके प्रश्न क्या हैं? भक्तों की भक्ति का वर्धन करने वाले। क्यों? क्योंकि इन प्रश्नों के उत्तर में भगवान का गुणगान होगा। उन्होंने एक छोटा सा प्रश्न पूछ लिया कि भगवान पक्षपात करते हैं या जो है पक्षपात नहीं करते, तो अब इस प्रश्न के उत्तर के लिए भगवान को कथा करनी पड़ेगी। और अचानक नारद मुनि जी को भी एंटर कर दिया ग्लोरीफाई करते हुए कि नारद जैसे ऋषि क्या करते हैं, भगवान की इसी प्रकार की कथाओं का सर्वदा क्या करते हैं, गुणगान करते रहते हैं। क्यों करा? क्योंकि अब जो है नारद जी की फिर एंट्री हो रही है और एक अच्छा एक बहुत सुंदर प्रसंग शुरू होने वाला है। कौन सा? हिरण्यकशिपु और भक्त प्रहलाद के विषय में तो भूमिका भी तैयार की जा रही है। उनके प्रश्न को वो बहुत ही सुंदर बताया जा रहा है क्योंकि अब जो है इस प्रश्न के द्वारा तो भगवान की बहुत सी लीलाओं को बोला जा सकता है और भगवान की लीलाओं के साथ साथ भक्तों का भी गुणगान किया जा सकता है। तो जिस प्रकार अब ये पूछा गया प्रश्न और इस प्रश्न के उत्तर में कई भक्तों ने ऑलरेडी बहुत से उत्तर दिए और आगे आने वाले समय पर जो है और प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि शिशुपाल और दूसरे कौन है, दंतवक्र, और फिर भगवान सॉरी सुखदेव गोस्वामी ये भी बता रहे हैं कि हैं कौन दोनों, कि जिस प्रकार भगवान की इच्छा से अगर भगवान चाहते हैं कि मैं कुछ जोर आजमाइश करूं, हाथों में अगर खुजली हो रही है भगवान की, कुछ युद्ध करना चाह रहे हैं, मन कर रहा है, तो पूरे ब्रह्मांड में कौन है जो भगवान से युद्ध करेगा? सोच कर देखिए, कोई इतना शक्तिशाली ही नहीं कि भगवान से, पहली बात तो शक्तिशाली तो छोड़िए, भगवान से युद्ध करने के लिए ऐसी मनोवृत्ति भी चाहिए कि मैं भगवान से युद्ध कर रहा हूं, ऐसी मनोवृत्ति भी किसी की तैयार नहीं होती। तो पहले तो अगर भगवान को अपनी इच्छा को पूरा करना है तो उस इच्छा को पूरा करने के लिए या फिर आध्यात्मिक जगत में जिन लीलाओं का आस्वादन नहीं करते कृष्ण या नहीं कर पाते, उन लीलाओं के लिए भी एक क्या चाहिए, स्टूडियो चाहिए या एक ऐसा वातावरण चाहिए जहां पर कि उन सब लीलाओं को संपन्न कर सकें। भगवान श्री कृष्ण के लिए इस भौतिक जगत में बार बार आना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, बार बार आने का मतलब ये नहीं कि भगवान को पसीना बहाना पड़ता कि एक युद्ध अभी कर कर आया हूं, अभी धर्म की फिर से स्थापना कर दी है, अभी कुछ दिन रेस्ट करता हूं, अचानक फिर से कॉल आता है, फिर से वो धरती माता पृथ्वी देवी फिर पहुंचती है ब्रह्मा जी के पास, सेव मी क्या हो गया, व्हाट इज द प्रॉब्लम, फिर से प्रॉब्लम शुरू हो गई, अच्छा अरे भैया तुम चैन से नहीं बैठने देते ना, चलो मैं फिर आ रहा हूं, है ना, फिर कुछ कर कर आए नीचे दूसरे अवतार में, चलो जी फिर ऊपर आ गए, अभी क्या है जी, फिर बेल बज गई, अब क्या है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग हम लोगों को लगता 17, 28, 12, 96, 8, 64 और 4, 32 कितना लंबा समय है ना, ऊपर तो पता ही नहीं चलता है समय का। ब्रह्मा जी के लिए चार युग क्या है, किसके बराबर है? पलक झपकने तक का समय है ब्रह्मा जी के लिए तो चार युग। इसका मतलब क्या है कि भगवान बस जैसे आए, अभी हरे कृष्णा बोले लोगों को अपने एसोसिएट्स को कि फिर नीचे जाना पड़ रहा है, ऐसा लगता होगा ऊपर जा रहे नीचे आ रहे बस बार बार। और ऐसा नहीं है, एक ही ब्रह्मांड में ही सब चल रहा है, असंख्य ब्रह्मांडों में सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग होता है, असंख्य ब्रह्मांडों में भी असुरों की भरमार है और हर जगह इंद्रारी इंद्रारी बोलते ना उन इंद्र के आर्यों अर्थात उनके दुश्मनों का वध करने के लिए भगवान को बार बार अवतरित होना पड़ता है। भगवान को इन सब लीलाओं में आनंद आता है, परिश्रम नहीं करना पड़ता। और क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि वो जो स्वतंत्र लड़का है जो 16 साल का नव यौवनचा, उनके हृदय में अगर कोई इच्छा आती है तो उनकी जो बहिरंगा और अंतरंगा शक्ति है, बस उनका काम क्या होता है कि भगवान को प्रसन्न करना है और भगवान के लिए एक ऐसा एनवायरमेंट तैयार करना है जिससे कि भगवान को हम आनंद दे सके उन लीलाओं में है? और फिर बार बार उन लीलाओं को संपन्न करने के लिए भगवान को वही अंतरंगा शक्ति बार बार कई चीजें भुला भी देती है ना, कि अभी तो आप वध करके अभी तो अपने अवतार लिया था ना, वही सब लीलाएं दिव्य धरातल पर चल रही हैं और भगवान हर लीला को इस प्रकार करते हैं जैसे वो पहली बार कर रहे हैं। दूसरे यूनिवर्स में एंटर करेंगे उधर भी फिर माखन चुराना, ठीक है ना, उन सब लीलाओं को इस तरह करते हैं कि जैसे कुछ नहीं जानते बिल्कुल। और ये काम है अंतरंगा शक्ति का भगवान की, विविधता भी है और फॉरगेटफुलनेस भी है भगवान की। यहां पर हम लोगों को सिखाया जाता है कि बिकॉज ऑफ फॉरगेटफुलनेस वी आर हेयर, सो ट्राई टू रिमेंबर आवर रिलेशनशिप विद द लॉर्ड। क्या है, हम लोग दास हैं भगवान के, है ना। और आध्यात्मिक जगत में ये भूलना पड़ता है कि हम दास हैं, उधर ये सारी जो चीज यहां से सीख कर गए वो भूलनी पड़ेंगी, है ना। क्यों भूलनी पड़ेंगी? क्योंकि वहां भगवान के साथ जब किसी लीला में कोई व्यक्ति रत होगा तो उसको भगवान की भगवत्ता भूलनी पड़ेगी, तभी तो उस लीला को संपन्न कर पाएंगे। कितना अजीब लगेगा कि भगवान कहेंगे चलो आज हम कबड्डी कबड्डी खेले और वहां पर लोगों ने जो है आरती की थाली लगाई हुई प्लेट की क्या बात कर रहे हैं भगवान, आपके साथ कबड्डी कौन खेले अरे मैं चाहता हूं कबड्डी खेलना, मैं गेंद खेलना चाहता हूं आपके साथ। नहीं नहीं, ओम जय जगदीश हरे चल रहा है, वो भगवान तो आनंद ही नहीं आएगा। इसलिए जब भगवान की इच्छा करती है तो उस इच्छा को संपन्न करने के लिए भगवान की शक्तियां कार्य शुरू करती हैं। इसलिए इस मटेरियल वर्ल्ड की जो है क्रिएशन शुरू होती है और इस संसार को खाली नहीं रखा जाता, इसलिए इसके अंदर जीवात्माओं को भेजा जाता है या जीवात्माएं जो भगवान से विरोध करती हैं या उनसे क्या कहते हैं अनादिर बहिर्मुख बहिर्मुख हो जाती हैं, जो अपना जो है फेस भगवान की तरफ से पीठ दिखा देते कि ठीक है हम उधर जाना चाहते, तो उन लोगों को इधर भेजा जाता है। तो दो तरह की लीलाओं में, एक भौम लीला और एक आध्यात्मिक लीला जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चल रही है, दोनों लीलाएं चल रही है भगवान की, वैकुंठ में भी चल रही है, गोलोक में भी चल रही है और इस भौम लोक में भी चल रही है। यहां पर भी जीवात्माएं हैं, वहां पर भी जीवात्माएं हैं, यहां पर बद्ध जीव हैं, वहां पर मुक्त जीव हैं, बट लीलाओं में कमी नहीं है। लीलाएं ऊपर भी चल रही हैं, यहां पर भी चल रही है, भगवान का गुणगान हर समय यहां पर भी चल रहा है और वहां पर भी चल रहा है। तो इस प्रकार जो है भगवान इस संसार को रचते हैं और रचना के बाद फिर कुछ ना कुछ ऐसा भी करते हैं, जैसे अगले श्लोकों में बताया जाएगा कि क्या कारण था कि इनको आना पड़ा असुरों के रूप में, है ना। तो क्या कारण था, कि भगवान की इच्छा थी कि अब मैं जो है कुछ रेसलिंग हो जाए, तो इसलिए चार कुमारों की नासिका के द्वारों में मतलब नाक से उन्होंने भगवान के चरणों में पड़ी हुई तुलसी की गंध सूंघी और वो चल पड़े भगवान के दर्शन करने वैकुंठ की। और वहां पर गार्ड्स जो थे कौन, जय और विजय, उन्होंने जैसे ही देखा, अरे ये, अरे भक्त प्रहलाद सिंह के बच्चे आ गए अंदर, वो भी नग्न अवस्था में, रोक दिया। और उन्होंने श्राप दे दिया। अभी जो ये जय और विजय हैं, जिनको श्राप मिला कि भाई आप जो है तीन, उन्होंने यही एक्सेप्ट किया कि हम तीन बार असुर बनना कबूल है हमें और भगवान ही हमारा उद्धार करने आएंगे, लेकिन जब ये असुर थे तब याद नहीं था इनको क्या कि वास्तव में तो हम, भाई जय बोलो, भाई वीरू नहीं विजय, कैसे हो? हाँ ठीक हूँ, अभी वापस कब जाना है, अगला कौन सा अपना प्रकट होना, किस रूप में प्रकट होना, ऐसा नहीं था। ये भी भूले हुए थे, तभी तो युद्ध कर पाएंगे भगवान से। जब कुंभकर्ण के रूप में और रावण के रूप में थे तो भी भूले हुए थे, तभी तो भगवान से इतनी ज्यादा द्वेष और एनवी की प्रकाष्ठा है। और जब हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष के रूप में है तो भी अपने आप को ही लॉर्ड समझते थे, हिरण्यकश्यप ने डिक्लेयर ही करते थे कि भगवान ही मैं हूं, तुम बंद करो ये सब पूजा पाठ। कहीं पर भी ऐसा नहीं दिखता कि हाँ इनको कुछ रियलाइज हो, कुछ याद आ गया हो। वैसे तो एक्चुअली वैसे हम पीछे वहां से बिलोंग करते हैं, कहां से हो आप, हम लोग ऊपर से, वैसे तो ऐसा कहीं नहीं सुना कि उसमें आ रहा हो, जैसे हमसे पूछते ना कहां से हो जी, पीछे से, हम सीतामढ़ी से हैं, नहीं पीछे से हम वहां से हैं, ऐसा नहीं, पीछे हम पाकिस्तान से हैं। कहीं पर भी उन्होंने ऐसा नहीं बोला, क्यों? वो भी भूले हुए, अरे जीवात्मा को भी भुलाएंगे तभी तो लीला होगी। और भगवान भी भूले हुए, और जब युद्ध होता है तो आ जाओ फिर दो, तब उनको लगता है कि हाँ क्या दिक्कत है इस छोटे से बालक को हराने में, मुश्किल थोड़ी, कितने कितने क्या क्या नहीं तोड़ ताड़ डाला हमने, पहाड़ तोड़ दिए, वृक्ष उखाड़ दिए, ये छोटा 3-5 साल का बच्चा हमारा क्या कर लेगा। और फिर जब भगवान की हाथों की खुजली की सेवा, हाथों की खुजली दूर करने की सेवा इन असुरों ने ली है ना, और इन लोगों ने जो है फिर भगवान के साथ युद्ध किया। क्या लगता था इनको युद्ध करते हुए कि हरा ही तो देंगे, क्या दिक्कत है इसमें, कितने कितने मारे हमने, दहाड़ी मारते थे लोग ऐसे मर जाते, भौमे ऊपर करते थे हिरण्यकशिपु तो देवता लोगों को जो है कंपन शुरू हो जाता था, खड़कने लगता था, खड़क खिड़कियों की तरह जैसे यहां पर बोलते हैं खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। अगर दोनों खड़क रहे हैं इसका मतलब भूकंप आ गया, भागो बाहर। तो ऐसे थे ये असुर, जिनका नाम, जिनका डंका पूरे विश्व में बजता था, लेकिन भगवान के साथ दो दो हाथ किए इन लोगों ने। और फिर जो ये असुर जिनका वध हुआ, जैसे बता रहे हैं कि दंत वक्र और शिशुपाल जैसे असुरों का भी वध होने के बाद इनकी जो आत्मा है आगे पता चलेगा, पूरा का पूरा समय ये लोग जो है द्वेष रखते थे भगवान से। तो आगे इतने सुंदर प्रश्न इसलिए किए ताकि हम लोगों के जिज्ञासाओं का समाधान मिल सके, हम सबको पता चल सके कि सही क्या है गलत क्या है। तो बताया जाता है, आगे उदाहरण भी दिए जा रहे हैं कि भगवान इस संसार की जो जीवात्माएं हैं, जो इस संसार में आ गई हैं किसी तरह, बस किसी न किसी तरह वो अपना ध्यान, अपना मन, अपनी इंद्रियां, अपनी बुद्धि अगर वो निवेश कर दें भगवान में, तो उस व्यक्ति की जो है मुक्ति, या जिसे बोलें कि इस संसार से छुटकारा, उसको मिल जाएगा। अब ज्यादातर अच्छा इन लोगों का फिर भी जो ये दोनों असुर थे दंतवक्र और शिशुपाल, इन्होंने जो मार्ग अपनाया था वो कहते बचपन से ही ना पैदा होते ही ये भगवान को गालियां देना शुरू कर दी थी उन्होंने शुरू से। अब हमारे घर में कोई बच्चा पैदा हो, हम शुरू से बोलते बेटा बेटा हरी बोल बोल, हाथ खड़ा करो, राधे राधे करो, है ना, हमारे परिवार में हम इस पर ट्रेन करते हैं, फेवरेबल है ना, अनुकूल भाव से भगवान के प्रति भक्त बनाने का प्रयास करते हैं। हम थोड़ी बोलते हैं जा ये ले मार क्या भगवान को, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। तो जो ये असुर थे ये पैदा हुए और बचपन से ही इन्होंने जो है भगवान को कोसना शुरू कर दिया, गालियां देना शुरू कर दी, और बड़े होकर तो बस ये देते बोलते रहते कुछ ना कुछ। हम तो बोल भी नहीं सकते ऐसी बातें, कितना अजीब लगेगा अगर हमारे जैसे भक्तों को बोला जाए तुम करो गुणगान, ये लो शिशुपाल की तरह गुणगान करो भगवान का। भक्त लोग कानों में अंगनी हाथ रख के भाग जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु के बारे में सार्वभौम ये जो थे हमारे कौन थे वो प्रकाशन सरस्वती प्रबोधन सरस्वती प्रकाशन सरस्वती थे, इतना गलत बोलते थे है कि नहीं। मायावादी कौन थे वो, वही थे ना, कितना सुनाते थे ये है कौन ये सन्यासी, मेरे सामने आकर तो देखे, इतनी निंदा करते थे महाप्रभु की कि एक बार आ जाए बसी काशी में हम समझाते हैं इसको, है ना, हमारे साथ टिक नहीं सकता, ये सब पागल है जो सन्यासी दूसरे लोग जो लोग चैतन्य महाप्रभु को मानने लगे भगवान, हमारे सामने आकर देखे इतना सुनते। उनके जो भक्त थे जो वहां रहते थे वो कानों में हाथ रखते थे, भगवान हमसे नहीं सहा जाता, आपके बारे में इतनी निंदा करता है ये व्यक्ति, अब प्लीज एक बार आओ तो सही, देखे तो सही आपको, हैं हम देख लेंगे कौन है कैसे है, इतनी निंदा करते थे। हमें पता है कि ज्ञान है हमारे पास, तो जब आए भी तो बिना मिले चले गए महाप्रभु, उसका है डर गया देखो। आते तो फिर पता चलता, और जब दोबारा आए तो उस सभा में चैतन्य महाप्रभु बाहर ही बैठ गए जहां सब लोग, जहां शू स्टॉल था हम सबका, और वहां से दिव्य प्रकाश निकल रहा था महाप्रभु के शरीर से, प्रकाशानंद सरस्वती बहुत जो है आकर्षित हुए महाप्रभु से, उनकी दैन्यता से, उनकी दीनता से, उनकी मतलब हम्बलनेस से, और उनको कहा कि महाप्रभु आप यहाँ क्यों बैठे हैं, अब चलिए ना आपका स्थान, ये थोड़ी आप तो सन्यासी हैं। उनकी दैन्यता को देखकर उनका हृदय पिघल गया, और महाप्रभु का दर्शन करके उनके सौंदर्य देखकर प्रकाशानंद सरस्वती भी जो है 50% तो उसी टाइम खत्म हो गए थे। और उसके बाद जब उनको लगा इतना सुंदर सन्यासी अगर हमें ज्वाइन कर ले, हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर ले तो क्या होगा, ये प्रचार करने में बड़ा काम आएगा, ये है ना मायावाद प्रचार करने में बहुत काम आएगा। लेकिन बाद में प्रकाशानंद सरस्वती और उनके जो 10,000 शिष्य थे सबको महाप्रभु की शरण ग्रहण करनी पड़ी, वैष्णव बनना पड़ा। तो इस प्रकार भगवान के दिव्य स्वरूप को देखकर जो है जो ये पांच बताए कई प्रकार से है, बट उसमें कोई भगवान को वात्सल्य रूप में प्रेम कर सकता है, कोई प्रेम प्रेम प्रेमिका के रूप में प्रेम कर सकता है, कोई दास्य भाव में कर सकता है, कोई साख्य भाव में भगवान से जो है उनको प्रेम कर सकता है, और कोई अगर ईर्ष्या और द्वेष के भाव से भी कर रहा है, तो क्योंकि भगवान दिव्य हैं, दिव्य धरातल पर है, और इस संसार की तरफ जब देखते हैं तो कोई भी व्यक्ति अगर जैसे भगवान के शुद्ध भक्त भी इसी चीज को देखते हैं, जैसे जब प्रभुपाद के पास न्यूज़पेपर आया उसमें देखा कि किसी मायावादी लोगों ने कितनी निंदा की है कृष्ण की, उसमें भी वो कृष्ण के नाम गिनते थे कि देखो 19 बार या 27 बार इसमें भगवान का नाम आया है, इतनी बार तो उसने जपा बोला और दूसरों को पढ़ने के काबिल बनाया। हमारे द्वारा किए गए गलत कामों का तो प्रभाव है इस संसार में, लेकिन की गई भक्ति का कोई नाश नहीं होता कभी। इसलिए भगवान ने भगवद गीता में घोषित किया अर्जुन के थ्रू, कहा कि बोल दो सब लोगों को ना मैं भक्त अपर्णशति, ना भक्त का और ना ही उसकी भक्ति का कभी नाश होता है। ये एक ऐसी चीज है जैसे परमानेंट मार्कर होता है ना, एक टेम्परेरी मार्कर एक परमानेंट मार्कर। टेम्परेरी मार्कर से लोग बार बार साफ कर कुछ भी कर सकते हैं, बट परमानेंट मार्कर भी यहां पर साफ हो जाता है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि वो परमानेंट मार्कर जो साफ ना हो, उसी तरह मार्क हो जाता है हमारे द्वारा की गई भक्ति का कोई भी फल जिसे कोई मिटा नहीं सकता, और फिर वो चाहे कितना ही दुष्ट व्यक्ति क्यों ना हो। कई बार बोलते हैं लोग मुंह में राम, छुरी तो बहुत छोटी होती है, आजकल तलवार रखते हैं लोग, मुंह में राम बगल में छुरी बोलते हैं लोग, मतलब कि व्यक्ति राम राम कर रहा है लेकिन दुनिया भर के पाप भी कर रहा है। पर जी ऐसे लोगों का क्या होगा, आपको क्या चिंता है, आपको ज्यादा चिंता है, आप उसके लिए 4 माला एक्स्ट्रा कर लो। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार भी कर रहा है, भगवान के नाम का भी दुरुपयोग कर रहा है, हो सकता है उसको नाम के बल पर पाप का पाप लग जाए, अपराध लग जाए, लेकिन उसकी फाइल भगवान के पास है क्योंकि भगवान का नाम ले रहा है, और भगवान ही योजना बनाएंगे कि उसको कैसे शुद्ध किया जाए, उसको कैसे ठीक किया जाए। वो व्यक्ति यमराज के कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं आएगा कि भाई वो चाहे कि हम इसको युद्ध कर। अजामिल जैसे लोग जब जीवन भर जिन्होंने उल्टे सीधे काम किए और अंत में केवल पुत्र को पुकारने के लिए ही नारायण बोला, ऐसी अवस्था में भी जो है उसको भगवान की कृपा प्राप्त हुई, विष्णु दूतों ने बचाया। वो चोर जो चोरी करने गया था मंदिर भगवान के आभूषणों की, जीवन भर पाप और चोरी ही तो की थी, लेकिन उसके बावजूद भगवान को प्रणाम करने से, चोरी करने के बाद फिर प्रणाम करने से और उस मंदिर में एक पत्थर को ठीक ढंग से लगाने के बाद जब उसकी मृत्यु हुई, जब उसको पकड़ लिया गया, तो विष्णु दूतों ने कहा कि तुम इसको नहीं ले जा सकते। यम दूतों ने कहा क्यों नहीं ले जा सकते, ये तो भाई हमारी भक्ति है, इसने पूरा जीवन पाप किया है। तो उन्होंने बोला देखिए इसने आज प्रणाम किया है भगवान को, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अगर कोई स्मरण करता है, नाम लेता है भगवान का, प्रणाम करता है भगवान को अंतिम समय में, तो उसके सारे पापों के फल जो है समाप्त कर देते हैं भगवान। अजामिल के केस में भी हमने देखा, उसके बाद तो उसने कुछ नहीं किया ना जी, उसके बाद ये थोड़ी कि फिर ठीक होने के बाद फिर उसने जाके फिर पाप किए, पाप फिर करेगा तो सबके लग जाएंगे फिर जो है, खबरदार। इसलिए उसको भी जो है कृपा प्राप्त हुई। कैसे कृपा प्राप्त हुई कि प्रणाम करने की वजह से एक तो सारे पाप समाप्त हो गए, भगवान के मंदिर में चोरी करने की वजह से उसने फिर माफी मांगी थी इसलिए वो भी समाप्त हो गए, उसके बाद मरा था वो, और इसलिए वैकुंठ जा रहा था क्योंकि उसने अपने पैरों से कीचड़ निकालकर एक पत्थर पर लगाकर मंदिर के उस भाग को फिर से ठीक कर दिया, पुनर्निर्मित। भगवान ने मंदिर से योग मान लिया और वैकुंठ में घर बना दिया। कितना इस तो भगवान भी चाहते हैं कि जो जीवात्मा यहां फंस गई हैं उन्हें वापस बुलाया जाए, इसलिए इस सारा का सारा जो भक्ति के जितने भी अंग हैं या भक्तों के द्वारा कथाएं हैं या भक्तों के अंदर जितने भी उनके तमोगुण रजोगुण सतोगुण के माध्यम से जो उनकी श्रद्धा डेवलप हुई है पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर, जहां पर भी वो है अब स्थित है, वो केवल उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए है, ताकि भगवान उन लोगों को जल्द से जल्द अपने तक बुला सके। और अगर इसमें किसी को ये लगता है कि किसी के साथ फेवर हो गया है ना, उसको भेज दिया उसको नहीं भेजा, तो ये हमारी दृष्टि जो कि दूषित है, जो कि यहां पर इस संसार में केवल प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिस पे सब कुछ देखती है, केवल प्रेजेंटेशन देखती है, हुआ क्या, इंटेंशन नहीं देखती या भगवान की योजनाओं को नहीं देख पाती, तो उसकी वजह से ऐसे प्रश्न किसी के दिमाग में आ सकते हैं कि ऐसा क्यों किया भगवान ने। जबकि भगवान का केवल एक काम है, जिस प्रकार आपने देखा होगा कई बार इस सड़क पर कुछ छोटे बच्चे और बड़े लोग जो कूड़ा उठाते हैं उनके पास एक रस्सी के साथ एक मैग्नेट बंधा होता है, देखा आप लोगों ने, क्या करते हैं वो लेकर चलते रहते रोड्स के कॉर्नर पर, और चलते चलते उस मैग्नेट से काफी सारा पार्टिकल्स ऑफ आयरन चिपक जाते हैं, और बाद में उसका क्या करते हैं वो उसको बेचते हैं और पैसे कमाते हैं। तो भगवान का काम भी ऐसा ही है, गुरु जो हैं उसी मैग्नेट की तरह इस संसार में घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, और वो पार्टिकल्स ऑफ डिवोशन जो लोग जिनके अंदर थोड़ा डिवोशन है, जिनके अंदर सतोगुण है, जिनके अंदर भक्ति करने की चाह है, जो फेवरेबली भगवान को की भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उन सब लोगों को अट्रैक्ट कर भक्ति में ठीक प्रकार से लगाकर उनको क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है आध्यात्मिक जगत, समझ पा रहे हैं। और जिनके अंदर वो गुण नहीं है वो गुण वही वो लोग उसी तरह रहते हैं उसी संसार में, उसके लिए फिर से भगवान और भगवान के भक्त लीला करने आएंगे, उन लीलाओं को संपन्न करेंगे, भक्त लोग भगवान के कीर्तन का कीर्तन करेंगे, प्रसाद का वितरण करेंगे, पुस्तकों का वितरण करेंगे हर जगह, और जहां जहां पर भी जो जो बद्ध जीव है सुन लेंगे, है ना। प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप चैंटिंग थोड़ा और लाउडली करो, सो दैट कि जितने भी बैक्टीरियाज हैं, ट्रीज एंड प्लांट्स हैं, ये भी सुन सकें, और जब ये सुनेंगे तो इनको भी जो है अच्छी गति प्राप्त होगी, इनको भी अच्छा शरीर प्राप्त होगा, ऐसा वाहन जिससे कि वो भक्ति कर सके। तो बाहरी दृष्टि से लग सकता है कि ये सब क्यों बनाया, काहे को दुनिया बसाई, है ना, कोई बोल सकता है कि क्यों बसाई तुमने दुनिया जब इतने कष्ट हैं, यहां इतने दुख हैं। लेकिन वास्तव में भगवान की जो योजनाएं हैं वो हम नहीं समझ सकते। हम बस केवल ये कर सकते हैं, या तो शिशुपाल की तरह या दंत वक्र की तरह भगवान की आराधना कर सकते हैं। कैसे? गाली गलौज के माध्यम से, अर्थात पूरी तरह कृष्ण भावना भावित होना पड़ेगा उस कंडीशन में भी। हर समय गालियां देनी है, नाना प्रकार की गालियां देनी है, जैसे शिशुपाल इत्यादि देते थे, या तो इतना बड़ा असुर बनना पड़ेगा, या फिर फेवरेबली अर्थात अनुकूल भाव से भक्ति को अपनाकर, भगवान की भगवत्ता को अपनाकर, उनकी सुप्रीमेसी को अपनाकर उनकी भक्ति करना। एक परिवार में जिस प्रकार एक पिता सारे बच्चों से प्रेम करते हैं, लेकिन विशेषकर उनसे ज्यादा प्रेम करते हैं जो उनका ध्यान रखते हैं या उनकी सेवा करते हैं, ठीक है ना। और भगवान जो है, जिस प्रकार इस संसार में, तो फिर भी एक पिता हो सकता है जो बेटा ठीक ना चल रहा हो, रोज सोच रहा हो कि पिताजी कब जाएंगे, है ना, कब मिलेगा हम सबको, है ना, या बार बार प्रयास करता हो पिताजी को ही धाम भेजने का, है ना। अभी कहीं सुना है हमने, अखबार में भी ऐसा कुछ आया कि किसी परिवार वालों ने अपने धनी पिता को एक सुपारी, क्या था, सुपारी दिन को, पान वाली सुपारी नहीं हाँ, कि भाई इनको बस ये बहुत परेशान करते हैं, कुछ देते हैं नहीं हमें, तो इनको एक सुपारी, इनके लिए एक सुपारी दी जाए, और उसको मरवा दिया गया। तो कलयुग में तो ऐसा होता है नहीं, लेकिन जो इस तरह का सुपारी वाला बेटा है, और एक दूसरा जो अच्छा वाला बेटा है जो गुलकंद के साथ पान खिलाता है पिताजी को, तो वो कहेंगे भी इसको मैं सबको देके जाऊंगा, है ना। हो सकता है इस संसार में फिर यहाँ के पिता फिर भी उस तरह के पार्शल हो, प्रॉपर्टी के आखिरी मरने के बाद जब देखी तो कोई बता रहा था कि टीवी में ऐड भी आता था सर, कि पिताजी के मरने के बाद एक चेक पे साइन करा, 00 लगवा, कहता फिर आखिरी में क्या हुआ, पानी की बूंद गिर के सब 0 हो गया तो इस संसार में लग सकता, लेकिन भगवान जो है यहां पर भेदभाव नहीं करते। भगवान जो है सबके प्रति संभाव है। अगर एक असुर को सांस लेने के लिए हवा दी है, तो एक भक्त को भी दी है, सबके पास बराबर सुविधाएं दी है भक्ति करने की, है ना। लेकिन अब ये लोगों के ऊपर है कि हम लोग उन सुविधाओं का कैसा उपयोग करें। यही समय व्यक्ति दूसरे कार्यों में भी लगा सकता है, लेकिन इसी समय का इस्तेमाल कर सकता है भगवान की कथा सुनने में, है ना। हर व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान की है, उस स्वतंत्रता के आधार पर हम लोगों को यह समझना होगा कि किस प्रकार लगाएं उसको भगवान से। तो जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं फेवरेबल कंडीशन में, है ना, और फेवरेबली सॉरी, तो ऐसे लोगों के लिए भगवान का विशेष भाव रहता भी है, क्योंकि भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथे व भजामि, कि भैया जो जिस मात्रा में जिस भाव से मुझे कुछ भी अर्पित करेगा, तो मैं उसी भाव से मैं भी उसको रेसिप्रोकेट करूंगा। तो आदान प्रदान है ये भावों का। इसलिए जो लोग, जिन लोगों को के ऊपर लग भी रहा है कि विशेष कृपा है, तो वो विशेष कृपा इसलिए है कि क्योंकि उन्होंने योग्यता कमाई है, वो उन्होंने उतना भजन किया है। हो सकता है हमें उसका भजन ना दिखता हो सकता है हमें उसके द्वारा की गई भक्ति ना दिखती हो, इस जन्म में तो बिल्कुल असुर दिखता हो, लेकिन हाँ पिछले जन्म में उसने कुछ ऐसा किया था। और कुछ पता नहीं कि कौन व्यक्ति का कब समय बदल जाए, कब उसको भक्तों का संग प्राप्त हो जाए, कब वो भगवान की कथा का श्रवण कर ले। जैसे एक बार चोर था जिसके पिता ने बोला था कि खबरदार कभी कथा कुथा सुनने मत बैठना, है ना, एक बार भगवान के रूप का वर्णन सुनकर कि भगवान ने कान में ये पहना है, गले में ये पहना है, पाँव में ये पहना है, सोने का ये है, चांदी का, तूने कहा ये तो बिजनेस की बात हो रही है, तो कौन बेटी है, वो भी कथा में बैठ गया ये सुनने के लिए कि कहाँ पर है व्यक्ति, कौन है कथा में, सब लोग चले गए प्रसाद पाने, है ना, प्रश्न उत्तर भी नहीं हुए, सब चले गए, वो बैठा रहा। उसने पूछा, स्वामी जी किसकी बात कर रहे थे, कहाँ है ये लड़का, किधर रहता है, किस गांव का छोरा ये? तो उन्होंने बोला, ये वृंदावन का है, है ना, नंद महाराज का लड़का है, यशोदास की मैया है, खूब खिलाती पिलाती हैं, खूब पहनाती हैं। अच्छा, जाता कहता आज यहीं पे हाथ साफ करते हैं। गया चोरी के भाव से था, रास्ते में भूल गया क्या नाम था पिताजी का, गांव का भूल गया नाम, वापिस आया कहता जो नाम क्या था दोबारा बताओ, फिर दोबारा गया और पूरा रास्ता कृष्ण भावना भावित था, बेशक चोरी के मूड से, ये आज तो जो है लंबा हाथ मारना है, पिताजी का नाम नंद महाराज है ना। कई भक्त लोग स्तुतियां करते हैं कि हम लोग तो जो है नंद महाराज के यहाँ जो खेल रहा ना छोटा सा बालक, पर ब्रह्म जो खेल रहा है, बस उसमें हम लोग चाहते कि हमारा ध्यान लगा, तो ऐसे ही वो कहते हैं जो खेल रहा है ना नंद महाराज के यहाँ, सब कुछ पहन कर रहा है, उस पर हाथ साफ कर रहा है मैंने, तो पूरी तरह जो है कृष्ण भावना भावी था। और जब वहां पहुंचा और मिलते भी हैं तो कहते हैं, अरे वाह ये तो बड़ा कुछ है ना, अच्छा भगवान का रूप देखे तो अच्छे अच्छे असुर भी चकित हो जाते हैं भाई, जो फेवरेबली भगवान का भक्त हैं, भगवान का दर्शन कर रहा है वो तो वैसे ही मोहित रहता है भगवान से, लेकिन जो असुर प्रकृति के लोग हैं, एक बार तो जब वो भी भगवान को देखते हैं, उनकी सुंदरता देखते हैं, तो वो भी जो है धराशायी हो जाते हैं एक बार, तो वो भी उनको भी लगा भी कुछ अलग ही है, नीले रंग का बालक। और फिर उनसे बात करते करते धीरे धीरे अपना बिजनेस शुरू कर दिया, लेकिन धीरे धीरे उनको लगा भी ये कमाल है। दो तरह की सुनी थी हमने कथा, एक में तो कहते हैं कि लेकर आ जाता है उस पंडित को, दोबारा दिखाता, देखो मैं लेकर आया हूँ, कहते ये कैसे हो सकता है, कहते मेरे को तो आज तक नहीं दिखाई दिए, तुझे कैसे दिख गए? क्योंकि पंडित जी तो कभी भी भाव से भक्ति करते ही नहीं थे, वो तो धन की भक्ति करते थे, वो तो उनका लेक्चर भी होता था कि भाई अब कथा के बाद क्या मिलेगा मुझे, और चोर को मिल गए। तो उसमें दूसरे कहते हैं कि जब उतारे उसने और लगा कि भगवान अब सुंदरता थोड़ी कम लग रही है भूषणों की, थोड़ा सा दोबारा भूषण पहना दें, वो दोबारा पहना दें, तो भगवान को पसंद आते हैं इस तरह के। तो भगवान क्योंकि भावग्राही जनार्दन, उसमें बताया गया है, शास्त्रों में बताते हैं भावग्राही जनार्दन विषय में कि क्या है कि मूर्खो वदति विष्णाय, कि हो सकता है कि कोई मूर्ख व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति विष्णु बोल भी ना पाए ढंग से, प्रोनंसिएशन उसका बड़ा खराब हो। जैसे हमारे कई बार लोग जब विदेशों से आते हैं मायापुर में, तो कई बार भक्त लोगों के साथ चैंटिंग कर रहे होते हैं, भक्त लोग तो कई बार चाइनीज भक्त जब चैंटिंग कर रहे होते हैं तो वो आर रा तो है नहीं उनके लैंग्वेज में, तो शायद वो रा की जगह लाम बोलते हैं, हले लाम 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 हरे हरे, तो कईयों को लग सकता है अरे प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, पता नहीं भगवान प्रसन्न होंगे, हमें तो बताया जाता बिल्कुल ठीक होना चाहिए, इसको तो ठीक ही नहीं तो जाएगा ही नहीं, तो नहीं रह जाएगा ना। और रशियन डिवोटीज कृष्ण कृष्ण करके ऐसे बोलते हैं, तो कई बार लग सकता है अरे भाई इनका तो प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन उनका भाव बहुत अच्छा है भगवान के प्रति। अब उनकी डिक्शनरी में जितने शब्द हैं उसमें तो बेस्ट बोल रहे हैं बेचारे, पूरा प्रयास कर रहे हैं सुनने का, हर चीज करने का, तो भगवान भाव से बोल, तो कहने हो सकता है कोई अनपढ़ या मूर्ख व्यक्ति भगवान के नामों का ढंग से प्रोनाउंस ना कर पाए, विष्णाय विष्णाय बोले, और कोई समझदार व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति, संस्कृत का स्कॉलर विष्णवे भी बोले, है ना, बहुत सुंदर प्रोनाउंसिएशन बोले। तो कह रहे हैं उभयस्तम समम पुण्यम, इन दोनों का समान पुण्य देखते हैं भगवान, क्योंकि भाव ग्रहे जनार्दन, भगवान क्या है, भाव को ग्रहण करने वाले हैं। कई बार लोग बोलते हैं डूबता वही है जो है, जिसे जिसे तैरना आता है, अरे ये क्या मतलब है? एक आधा कोई गलती से तैर के अच्छा तैराक डूब गया, इसका मतलब ये थोड़ी कि सारे तैराक ही डूबते हैं, नहीं समझे? और जिसको तैरना नहीं आता वो नहीं मरता कभी पानी में जाके, क्या उनका तो 100% रिजल्ट है, उसका तो फिर भी कम रिजल्ट हो सकता है। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि जिसको, इसका मतलब ये नहीं कि तैराकी ना सीखे व्यक्ति, बस समझे कि ठीक है अगर डूबने ही एक दिन तो जो अच्छा तैराक हो तो डूबेगा डूबेगा, वो अहंकार बस डूब जाता होगा, चलो समुद्र में छलांग मारता हूँ, इसको क्रॉस करके दिखाता हूँ, 1 किलोमीटर के बाद शाएं, है ना, ऐसी स्थिति में दिक्कत हो सकती है। वैसे जिनको तैरना नहीं आता वो तो छलांग भी नहीं मारेंगे, नहीं उस गली में जाने ही क्यों जिस जगह में उसका नाम ही क्यों पूछे जगह जाना नहीं है। वो बात अलग है कि कोई धक्का मार दे उसको और बाद में ऊपर आके पूछे मुझे धक्का किसने मारा था। तो कहने का मतलब क्या है, उभयस्तम समम पुण्यम, समान पुण्य है, समम मतलब बराबर। भगवान ये देखते हैं कि किसके अंदर क्या भाव है, किसने किस भाव भक्ति से मुझे पूजा है, इंटेंशन क्या है उसकी, तो उसको स्वीकार करते और उसी के आधार पर भगवान क्या करते हैं, रिजल्ट देते हैं, है ना। कई बार बच्चे कहते हैं हम तो एग्जाम में इतना कुछ करके आए क्योंकि हमने सुना था हमारा टीचर तो ऐसे ऐसे नाप कर देते हैं मार्क्स, लेकिन हर टीचर ऐसा नहीं है जो ऐसे नाप कर मार्क्स देगा, कोई टीचर ऐसे भी सब पढ़ेंगे, है ना। तो भगवान ऐसे जो सब कुछ देखते हैं, तुक्के में नहीं चलता भगवान का काम कि भगवान को मैं जो है क्या कर लूंगा, मूर्ख बनाऊंगा, सीधा गोलोक धाम जाऊंगा, बीच में कहीं नहीं रुकूंगा, बस अभी तो पाप करने दो, आखिरी में जैसे यमराज के दूत आएंगे बोल दूंगा हरे कृष्णा। तो भगवान ने तो कहा अंत काले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, मेरे धाम को मेरे स्वभाव को प्राप्त करेगा, सीधा गोलोक में एंट्री, नहीं नहीं नहीं, भाव ग्राही जनार्दना, इसमें कितना भाव था, कितनी चलाकी थी, कितना कुछ था, उसके हिसाब से कुछ मिल जाएगा, खराब नहीं जाएगा लेकिन कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। तो भगवान बहुत चतुर है और जो उनको भजता है वो भी चतुर हो जाता है, जो भजे कृष्ण से ही बड़ा चतुर। तो चतुरता का मतलब यही है कि अपनी चतुराई दिखाएं कि अपने माइंड इंटेलिजेंस बॉडी को कैसे भगवान की सेवा में लगाया जाए, ये बुद्धिमानी है, ठीक है कि नहीं। हरे कृष्ण चलाइए, ठीक है, किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं जी।
यहाँ पे जीवात्माएं हैं ये वापस उनके पास गोलोक धाम में आए, तो प्रभु जी अभी सपोज यहाँ से भक्ति करने के बाद अगर 1% चांस लग गया गोलोक धाम जाने का, तो हमारा क्या वो है कि हम वहाँ से फिर वापस विरोध नहीं करेंगे।
वेरी गुड, अच्छा प्रश्न है कि भाई सुबह से लेकर शाम तक हम यहाँ तो ग्रंथ पढ़ रहे हैं कि ये भौतिक जगह बड़ा दुखालय है, आध्यात्मिक जगह चलो, भगवान के धाम चलो, और ऊपर जाके पता चला वहाँ भी ये ग्रंथ है, वो कह रहा नीचे चलो। नहीं, यहां सारे ग्रंथ कह रहे ऊपर चलो, ऊपर का ग्रंथ कहता है नीचे चलो, कब तक दास बने रहोगे, वहां तो भगवान बन सकते हो। वहां पर तो, यहां तो भगवान की सेवा करनी पड़ती है, और वहां सब अपने सेवक, देखो उस बिजनेसमैन को देखो कितने लोग उसकी जय हो, हाँ तो पता चले उधर से नीचे भेज दे, ऐसा ये कह रहे हैं हम। हाँ कई बार लोगों को लगता है, लेकिन अगर भगवान किसी बात का अश्योरेंस दे रहे हैं, यत गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धाम परमम मम, भैया मेरे उस धाम में आने के बाद कोई भी व्यक्ति दोबारा नीचे नहीं जाता, भगवान की इच्छा से आ सकता है, आपको कष्ट ले, भगवान की इच्छा से जय विजय नीचे आए, जय विजय की इच्छा नहीं थी, बड़ा परेशान होगा कि नीचे जाना पड़ रहा है, वहां का द्वारपाल भी नीचे नहीं आना चाहता। तो जो भगवान के साथ अंदर रंग रलियां मना रहे हैं, जो भगवान के साथ सेवा कर रहे हैं सुबह से शाम तक, जो आनंद में है, वो क्यों चाहेंगे। दूसरी बात, हम लोग इस संसार में हैं यहां की गंदी बुद्धि के साथ, गंदी समझ के साथ, इसलिए हम लोग यहीं का प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं हर समय। जब व्यक्ति कोई निष्ठा के स्तर पर भी पहुंचता है ना, तो वो भी कम से कम इतनी अच्छी बुद्धि हो जाती है, वो समझ पाता है कि कितना गंदा है जगत है ये, शुद्ध भक्ति की तो बात ही नहीं कर रहे, आप तो कह रहे ऊपर जाके नीचे आना, व्यक्ति ब्रह्म ज्योति के बाद नीचे नहीं जाना चाहता, समझ रहे, एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर जाने के बाद नीचे नहीं जाना चाहता, मानसर करते हैं आप। तो किसी मीट वाले को लगे अरे भैया मैंने छोड़ दिया आज, कल को मन करे फिर खाने का, तो जब आप देख लीजिए कि कितना केवल इन खाद्य पदार्थों को, उल्टे सीधे खाद्य पदार्थों को छोड़ने से आपको कितना अच्छा लग रहा है, आप दोबारा नहीं खाना चाहते, जब ये तो निकृष्ट स्वादों की बात कर रहा हूं मैं, आध्यात्मिक जगत में उसका आनंद लेने के बाद कोई थोड़ी भौतिक जगत में सड़न दोबारा आएगा, उसकी इच्छा नहीं होती, भगवान की इच्छा से, क्योंकि भक्त लोग कुछ ऐसे भी चाहते हैं कि हम भगवान की सेवा करते रहें, तो भगवान कई भक्तों को तो अपने साथ लिए फिरते हैं हर जगह, आज इस प्लेनेट में, आज उस प्लेनेट में, उस प्लेनेट, है ना, उनके साथ लीलाएं करते हैं। भगवान ने इच्छा करी तो जय विजय इस तरह के असुरों के रूप में आए, तो भगवान ने उनको भी उद्धार करके वापस भेजा। भगवान चाहते तो होता है ऐसा है। हाँ जी
जी, मुनि शब्द का अर्थ बताते हैं प्रभुपाद के, जो व्यक्ति जिसकी फिलॉसफी बाकी मुनि से हमेशा डिफर करती है, तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी को महामुनि बोला जा रहा है, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे?
क्योंकि उनकी फिलॉसफी दूसरे मुनियों से अलग है, वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, है कि नहीं? और कुछ? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की निताय गौर प्रेमानंद।